अंगोपांग नाम कर्म के उदय की अपेक्षा रखने वाली जो आत्मा है उसके द्वारा उदस्य माना कोष्ठियो वायु हो रुच्छ्वास लक्षण प्राण इति उच्यते। उदस्य माना बाहर छोड़ी जाने वाली जो कोष्ठियो वायु ने कोठे की है वायु है वो उच्छ्वास है नाम जिसका ऐसा प्राण कहलाता है। तेनैव आत्मना बाह्यो वायु रभ्यंतरी क्रियमाणो उसी आत्मा के द्वारा बाहरी वायु अंतर की जाती है। निश्वास लक्षणों पान इति आख्यायते वो पहली जो थी प्राण है जो अंदर की बाहर निकल रही है और बाहर की भीतर जा रही है तो फिर वो अपान है निश्वास नाम है उसका। एवं इत्याख्यायते एवं तौ अपि आत्मानुग्राहिण इस प्रकार आन और प्राण श्वासोच्छ्वास भी आत्मा के अनुग्राहक हैं उपकारक हैं जीवित हेतुत्वात् क्योंकि सांस चलती है तब तक जीवन का हेतु जीवित रहने में हेतु रहती है। तेषां मन प्राणापानानां मूर्तिमत्वम अवसेयम उन मन का प्राणापान का भी पौद्गलिकपना स्वीकार करना चाहिए। कुतः क्यों तो मूर्तिमत्वे प्रतिघात आदि दर्शनात् क्योंकि सांस का और फिर मन का पुद्गल द्वारा प्रतिघात आदि देखा जाता है। प्रतिभय हेतु भी रशनिपातादि भी मनस प्रतिघातो दृश्यते प्रतिभय के हेतुओं के द्वारा माने डर के कारणों से मन का घात होता है और अशनिपात आदि भी बिजली वगैरह गिरे तब भी मन बहुत स्तब्ध हो जाता है। सुरादिभिश्चाभिभव और शराब वगैरह कोई पी ले तो भी मन ठीक से काम नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि इन पुद्गल द्रव्यों का जिस पर प्रभाव पड़ रहा है वो भी पुद्गल होगा। हस्ततल पटादि भी और हस्ततल और पट आदि कपड़े आदि के द्वारा अस्य संवरण रास्य संवरणात् मुंह को ढक लेने पर प्राणापानी हो प्रतिघात उपलब्ध सांसों का रुक जाना हो जाता है। हाथ से अगर नाक बंद कर दो या फिर कपड़े से ऐसे मुंह ढाक दो तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो इससे ये समझ में आ जाता है कि जो सांसें चल रही है ये भी पौद्गलिक है। श्लेष्मणा चाभी बहुत सर्दी जुकाम ज्यादा हो जाए तो भी सांस नहीं चलती बोले तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सांसें भी जो है पौद्गलिक है पुद्गल से संबंधित है। न चामूर्त से मूर्ति मध्य अभिघाता दृष्टि और बोलते हैं कि अमूर्त अगर मानोगे तो फिर अमूर्त का मूर्त के द्वारा अभिघात आदि नहीं हो सकता। अतएव आत्मास्तित्व सिद्धि इसी से आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि होती है। यथा जैसे यंत्र प्रतिमा चेष्टितम कठपुतली की चेष्टा होती है वो प्रयोक्तुर अस्तित्व गमयति किसी कठपुतली को चलाने वाले की ओर जानकारी प्रदान मतलब कठपुतलियां नाच रही है तो इससे समझ में आता है कि कोई नचाने वाला होगा। बस इसी प्रकार तथा प्राणापान आदि कर्मापि प्राण अपान आदि कार्य भी क्रियावंतम अपना आत्मानं साधयति कोई उस कार्य को करने वाला क्रिया वाला कोई आत्मा है उसको सिद्ध करता है। आत्मा न हो तो फिर सांसें बंद हो जाती है इसका मतलब क्या हुआ कि सांसों को संचालित करने वाली जो शक्ति थी जो वस्तु थी वो आत्मा थी तो उससे आत्मा की भी सिद्धि होती है श्वासोच्छ्वास आदि से कि मेतावान एव पुद्गल कृत उपकार अवस्विद अन्योप्यस्ति इति अतः क्या इतना ही पुद्गल के द्वारा किया गया उपकार है जीव के ऊपर अथवा अन्य भी कोई है। इसलिए यहां से एक सूत्र कह रहे हैं सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च सुख दुख जीवन और मरण भी पुद्गल के उपकार होते हैं। सदसद वेद्योदयेन्तरंग हेतु सति साता और असाता वेदनी के उदय रूप अंतरंग हेतु के होने पर बाह्य द्रव्यादि परिपाक निमित्त वशाद उत्पद्यमान प्रीति परिताप रूप परिणाम सुख दुखम इत्याख्यायते बाह्य किसी द्रव्य आदि के परिपाक का निमित्त होने के कारण उत्पन्न होने वाला प्रीति अथवा परिताप रूप परिणाम सुख और दुख ऐसा कहा जाता है। भवधारण कारण आयु भवधारण कारण आयु राख्य कर्मोदयात भव धारण करने में कारणभूत जो आयु नामक कर्म है उसके उदय से भवस्थितिम आदधानस्य, उस भव में स्थिति को स्वीकार करने वाले जीवस्य, जीव के पूर्वोक्त प्राणापानक क्रिया विशेषा विच्छेदो जीवितम इति उच्यते। पहले कहे गए जो प्राण अपान आदि क्रियाएं हैं, श्वासोच्छ्वास आदि, उन विशेषों का अविच्छेद बना रहना जीवितम इति उच्यते। सांसें चलती रहे तो कहा जाता है कि जीवित है। तदुच्छेदो मरणम, वो अगर नष्ट हो जाए तो मरण है। एतानि सुखादीनि, ये जो सुखादिक हैं जीवस्य, जीव के लिए पुद्गल कृत उपकार है, पुद्गल द्वारा किए गए उपकार है। मूर्ति मध्य हेतु सन्निधाने सति तदुत्पत्ते है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य का सन्निधान है होने पर ही उसकी उत्पत्ति होती है। उपकाराधिकारात उपग्रह वचनम अनर्थकम, ये हमारे मन में भी शंका आई थी कि इस सूत्र में उपग्रहाश्च ऐसा क्यों लिखा है, तो उपकार का प्रकरण ही चल रहा है इसलिए उपग्रह वचन व्यर्थ है। नानर्थकम, आचार्य उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, व्यर्थ नहीं है। सो उपग्रह प्रदर्शनार्थम इदम, अपना उपकार प्रदर्शित करने के लिए यह कथन किया गया। पुद्गलानाम पुद्गल कृत उपकार इति, पुद्गलों के लिए पुद्गल के द्वारा किया गया उपकार इस प्रकार। तद यथा, वो कैसा, बोले कांस्यादीनाम भस्मादिभिर जलादीनाम, अब कांस्य वगैरह के जो बर्तन है उसको भस्म आदि के द्वारा उपकृत किया जाता है, मतलब कांसे के बर्तन को राख से मांझ लो तो चमक जाता है, ये उसका उपकार हो गया। और जलादीनाम पानी वगैरह का, कतक आदि फिर, कतक यानी निर्मली के बीज डाल दो पानी में तो फिर उसमें जो धूल है वो नीचे बैठ जाती है, तो उपकार हो गया पानी का। अह प्रभृति नाम उदकादि फिर उपकार क्रियते, और लोहे वगैरह जो है उनका भी पानी आदि के माध्यम से उपकार किया जाता है। लोहे की तलवार है उस पर पानी चढ़ाते जाओ और धार करते जाओ तो वो तेज हो जाती, पैनी हो जाती तलवार, तो उसका उपकार हो जाता है। च शब्द किम अर्थ, फिर च शब्द क्यों रखा, समुच्चय अर्थ, सबका संग्रह करने के लिए। अन्यो भी पुद्गल कृत उपकार ओस्ती समुच्चय, और भी पुद्गल के द्वारा किए गए उपकार है, इस बात का समुच्चय संग्रह कर लिया जाता है। यथा शरीराणी एवं चक्षुरादीन इंद्रियाणी अपि, जैसे शरीर आदि भी पुद्गल के उपकार है, आँख आदि इंद्रियां भी पुद्गल के उपकार है, ऐसे और भी ग्रहण कर लिए जाते हैं। वे माध्यम अजीव कृतम उपकारम प्रदर्श, अब पहले अजीव के द्वारा किए गए उपकार को प्रदर्शित करके, जीव कृतोपकार प्रदर्शनार्थमाह, जीव के द्वारा किए गए उपकार का प्रदर्शन करने के लिए अगला सूत्र कहते हैं परस्पर उपग्रहो जीवानाम। परस्पर शब्द कर्म व्यतिहारे वर्तते, परस्पर शब्द जो है वो कर्म व्यतिहार के अर्थ में आता है। कर्म व्यतिहारश्च क्रिया व्यतिहार, और कर्म का व्यतिहार जो है उसका अर्थ क्रिया का व्यतिहार। परस्परस्य उपग्रह, परस्पर उपग्रह, एक दूसरे का उपकार परस्पर उपग्रह कहलाए। जीवानाम उपकार, ये जीवों का ही उपकार हो गया। कब पुनर्सव, वो कैसा उपकार, कौन सा उपकार है, बोले तो बोले स्वामी भृत्य है, मालिक नौकर का उपकार करता है, नौकर मालिक का उपकार करता है, आचार्य शिष्य है, आचार्य शिष्य का उपकार करते हैं, शिष्य आचार्य का उपकार करते हैं, इत्येवम् आदि भावेन वृत्ति परस्पर उपग्रह। इस प्रकार से एक दूसरे के प्रति उपकार, उपकार वृत्ति जो होती है वो एक दूसरे का उपकार है। स्वामी तावत, अब कैसे उपकार करते हैं, देखिए स्वामी जो है वो वित्त त्यागादिना वृत्याना उपकार वर्तते, स्वामी जो उसको पैसे वगैरह दे करके उसका उपकार करते हैं, और भृत्याश्च और नौकर कैसे करते हैं, हित प्रतिपादनी ना हित प्रतिषेधी नच, स्वामी के लिए जो हित की बात है कि आपको इससे फायदा होगा, और अहित का जो प्रतिषेध निषेध है उसके द्वारा वो उपकार करते हैं। आचार्य, आचार्य कैसे उपकार करते हैं, उभय लोक फल प्रदोपदेश दर्शनी ने, दोनों लोक में, इस लोक और परलोक में फल प्रदान करने वाले उपदेश को दर्शाने से, और तद उपदेश विहित क्रियानुष्ठापने निच, और उस उपदेश द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के अनुष्ठापन, क्रियाओं को कराने से शिष्याणाम उपग्रह वर्तते, अनुग्रह वर्तते, शिष्यों के उपकार करने में वर्तते हैं, और शिष्य अपि, शिष्य कैसे उपकार करते हैं, तदानुकूल्य वृत्त्या आचार्याणाम, उनके अनुकूल प्रवृत्ति करके आचार्यों का उपकार करते हैं कि भाई ऐसा जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही हम कर रहे हैं। तो उपकार अधिकार है, पुनः उपग्रह वचन किम अर्थम? उपकार का प्रकरण ही चल रहा है, फिर से आप बार बार उपग्रह उपग्रह वचन करते रहते हो, क्यों? तो बोले कि पूर्वोक्त सुखादि चतुष्टय प्रदर्शनार्थम पुनः उपग्रह वचन क्रियते। पहले कहे हुए सुख आदि जो चार थे, सुख दुख जीवन और मरण, इनको भी यहाँ पर प्रदर्शित करने के लिए उपग्रह वचन किया जाता है। सुखादीन्यपि जीवानाम जीवकृत उपकार, सुख आदिक भी जीवों के लिए जीव के द्वारा किए गए उपकार है, जीवन मरण भी जीव के द्वारा जीव के लिए किए गए उपकार है। ये खास बात है उपग्रह वचन के द्वारा, ये भी ग्रहण कर लेना है। पांचवा अध्याय सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का 22वें सूत्र के उत्थाने का। आह यद्यवश्यम सतोपकारिणा भवितव्यम्। कोई कहता है कि यदि सत अर्थात जो भी विद्यमान है द्रव्य है उसका कोई ना कोई उपकार होना चाहिए, तो संश्च कालो भी मतस, काल को भी सत रूप माना गया है, तस्य का उपकार इति अत्र उच्यते, उसका क्या उपकार है? इसलिए यहाँ पर कहा जाता है वर्तना परिणाम क्रियाः परत्वा परत्वेच कालस्य। ये इतने काल द्रव्य के उपकार है। वृतेर निजंतात कर्मणि भावे वा युटि स्त्रीलिंगे वर्तना इति भवति। व्याकरण से वर्तना शब्द कैसे बना है उसकी जानकारी दी गई है। निजंतात, निजंत न्यंत बोलते हैं जिसको, वृतु या वृति वर्तना, होने के अर्थ में ये धातु होती है, बर्तने के अर्थ में, तो उसको कर्म में अथवा भाव में युटि, एक ल्युट प्रत्यय होता है, यहाँ पर युट प्रत्यय दिया है, वो प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंगे स्त्रीलिंग में वर्तनेति भवति, वर्तना इस प्रकार रूप हो जाता है। वर्त्यते वर्तन मात्रम वा वर्तनायति, जो वर्तत वर्ता जाता है या फिर वर्तन मात्र होता है उसको भी वर्तना कह सकते हो। धर्मादीनाम द्रव्याणाम, धर्म आदि जो द्रव्य हैं उनके स्वपर्याय निर्वृत्तिम प्रति, अपनी अपनी पर्यायों की रचना के प्रति, स्वात्मनैव वर्तमानानाम, स्वयं अपने आप से ही जो वर्तमान है या प्रवृत्त है उन बाकी द्रव्यों के बाह्योपग्रहाद विना, बाह्य निमित्त के बिना तद्वृत्त्यभावात, वो परिणति का अभाव हो जाता है। यानी कोई बाह्य सहकारी कारण न हो तो फिर किसी द्रव्य में परिवर्तन नहीं आ सकता, कोई न कोई सहयोगी होना चाहिए। तत् प्रवर्तनोपलक्षित काला इति, तो उस प्रवर्तन जो जो प्रवर्तन वह देखा जाता है, द्रव्यों में परिवर्तन देखा जाता है, उससे काल की पहचान हो जाती है कि भाई कोई है निमित्त और वो बाह्य निमित्त काल नाम का एक द्रव्य है। इति कृत्वा वर्तना कालस्य उपकार है, तो ऐसा करके वर्तना जो है उसको काल का उपकार माना जाता है। को निजर्थ है, अब इसमें निजर्थ क्या है? बोले वर्तते द्रव्य पर्यायस तस्य वर्तयिता काल है। वर्तन निजर्थ मतलब वर्तन कराने वाला, तो वर्तन कौन कर रहा है? द्रव्य और पर्याय, और वर्तन कौन करा रहा है? काल। यद्येवं कालस्य क्रियावत्वं प्राप्नोति। अब शंकाकार कहता है कि यदि ऐसी बात है तो फिर काल में क्रियावान होना प्राप्त होता है, यानी काल भी क्रियावान हो गया अगर दूसरों को वर्ता लेता है तो। यदा शिष्योधीते उपाध्यायो ध्यापयति इति, जैसे शिष्य पढ़ता है उपाध्याय पढ़ाता है, ऐसा यानी शिष्य यानी विद्यार्थी, उपाध्याय यानी अध्यापक है, वो अध्यापन करता है। नैष दोष, ये शंका उसने शंकाकार की शंका थी है कि जैसे शिष्य पढ़ता है तो अध्यापक पढ़ाता है, वैसे कोई चीज परिवर्तन करती है तो काल उसको परिवर्तन कराता है, तो अगर जीव और पुद्गल जो गतिमान है क्रियावान है वो क्रिया कर रहे हैं तो फिर काल भी उनको क्रिया करा रहा है, तो फिर काल को भी क्रियावान होना चाहिए ना, ये शंका है। तो आचार्य उत्तर देते हैं, नहीं दोष, ये दोष नहीं है। निमित्त मात्रे पि हेतु कर्तृ व्यपदेशो दृष्ट, निमित्त मात्र होने पर भी हेतु कर्ता रूप से नाम देखा जाता है। यथा कारिशोग्निर अध्यापयति, कंडे की आग अध्यापयति पढ़ाती है, वो कंडे की आग तो निमित्त मात्र है लेकिन फिर भी कथन ऐसा होता है कि भाई पढ़ाती है, जैसे बिजली पढ़ाती है। आज की भाषा में ये बिजली बोलोगे, पुराने जमाने में वो पढ़ते थे कंडे की आग से। एवं कालस्य हेतु कर्ता रहता, इस प्रकार काल भी हेतु कर्ता यानी निमित्त मात्र है। स कथं काल इत्यवसीयते, वो काल इस प्रकार से कैसे निश्चित किया जा सकता है? तो बोलते हैं कि समयादीनां क्रिया विशेषाणां, समय आदि जो क्रिया विशेष हैं वे कैसे हैं? समयादिभिर वर्त्यमानानां निर्वर्त्यमानानां, समय आदि के द्वारा जो रची जाने वाली हैं ऐसी, च पाकादीनां जो पाक आदि क्रियाएं हैं उनका, समय पाक जो समय लगता है पाक होता है, इत्येवम आदि स्वसंज्ञा रूढ़ि सद्भावेपि इत्यादि, जो अपनी अपनी संज्ञा की रूढ़ि का सद्भाव होने पर भी, समय काल जो समय है वो काल है, ओदन पाक काल भात का पकना है वो काल है, इति अध्यारोप्यमाण, ऐसा जो अध्यारोपण होता है मतलब ऐसा जो कथन किया जाता है जोड़ा जाता है, काल व्यपदेश तद व्यपदेश निमित्तस्य, जो काल का व्यपदेश है, काल व्यपदेशस लिखा है क्या? स है ना, स होना चाहिए, इसमें स छूट गया है छपने में। तो काल का जो व्यपदेश यानी नाम है संज्ञा है वो तद व्यपदेश निमित्तस्य कालस्य अस्तित्वम गमेति, जैसे भात पकने का काल एक घंटा डेढ़ घंटा जितना भी काल लगा, तो अब ये जो भात का पाक हुआ एक घंटे में भात पका, तो वो एक घंटा क्या है? बोले कि वही काल को सूचित करने वाला काल है, काल के अस्तित्व को गमयति जतलाता है, उसकी जानकारी देता है। कुतः, क्यों, कैसे? गौणस्य मुख्यापेक्षत्वात्, अगर गौण कोई वस्तु होगी तो फिर कहीं ना कहीं कोई मुख्य भी साथ में होगा, माने अगर व्यवहार, गौण का अर्थ यहां पर व्यवहार ले लो, जो व्यवहार काल है वो, और फिर मुख्य निश्चय काल, काल द्रव्य कालाणु, तो व्यवहार काल अगर है तो फिर काल द्रव्य नाम का निश्चय काल भी होना चाहिए, क्योंकि व्यवहार काल पर्याय रूप है, तो पर्याय किसकी होगी? द्रव्य की होगी, बिना द्रव्य के पर्याय नहीं हो सकती। द्रव्यस्य पर्याय, द्रव्य की पर्याय धर्मांतर निवृत्ति धर्मांतरोपजनन रूप, अन्य धर्म रूप, अन्य जो गुणधर्म होते हैं उसकी निवृत्ति, और धर्मांतर रूप जनन रूप, और किसी अन्य धर्म को की उत्पत्ति, मतलब उत्पाद, एक तो धर्मांतर निवृत्ति यानी किसी अवस्था की निवृत्ति व्यय, और दूसरे धर्मांतर रूप जनन रूप किसी दूसरे की उत्पत्ति, ऐसा जो अपरिस्पंदात्मक परिणाम, परिस्पंदन से रहित एक परिणमन होता है, जीवस्य क्रोधादि जीव में क्रोधादिक है, पुद्गल से वर्णादि पुद्गल के वर्णादिक पर्याय है, धर्माधर्म आकाशानाम अगुर लघु गुण वृद्धि हानिकृत, धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य में अगुर लघु गुण के निमित्त से जो वृद्धि और हानि द्वारा की गई पर्याय है वो हो जाती है। क्रिया परिस्पंदात्मिका, और जो क्रिया होती है वो परिस्पंदात्मक होती है, हलचली रूप होती है। सात विविधा दो प्रकार की, प्रायोगिक वैसरसिक भेदात, प्रायोगिक और वैसरसिक के भेद से, प्रायोगिक तत्र प्रायोगिकी शक्टादीना, प्रायोगिक माने किसी के द्वारा प्रेरित करके जो क्रिया की जा रही है, जैसे गाड़ी वगैरह की क्रिया होती है, कोई चलाने वाला होता है गाड़ी चलती है, वैसरसिकी मेघादीना, और वैसरसिक जो ऑटोमेटिक मनुष्य के बिना हो जाती है क्रिया, वो बादल वगैरह की जो गति होती है वो अपने आप होते रहती है हवा से। परापत्व क्षेत्र कृते काल कृते चस्त, पर और अपर पना ये क्षेत्र द्वारा भी किया जा सकता है और काल के द्वारा भी किया जा सकता है। तत्र कालोपकार प्रकरणात, अब वहां काल के उपकर का उपकार का प्रकरण होने के कारण काल कृते गृह्येते, काल द्वारा किए गए जो पर और अपरत्व हैं उनको यहाँ पर ग्रहण किया जाता है। ते इति वर्तनादय उपकारः, वे जो ये वर्तनादि उपकार है वो कालस्य अस्तित्वं गमयन्ति, काल के अस्तित्व को सूचित करते हैं। ननु शंका करके था वर्तना ग्रहण में अस्तु, वर्तना को ही ग्रहण करना चाहिए बस, सूत्र में वर्तना कालस्य, बस ज्यादा लंबा बनाने की क्या आवश्यकता है सूत्र को, क्योंकि सूत्र में एक अक्षर कम हो जाए तो वैयाकरण जो लोग होते हैं वो पुत्र जन्म जैसा उत्सव मनाते हैं कि हमारे सूत्र में एक अक्षर कम हो गया, बहुत आनंदित होते हैं। बोले आप इतना सूत्र लंबा बना रहे हो, इसमें सिर्फ वर्तना ले लेते तो क्या नुकसान था। तद्भेद परिणाम आदेश, अब उसी के तो भेद हैं, परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व ये सारे तो वर्तना के ही भेद हैं। तो पृथक ग्रहण अनर्थकम तेषाम, उनको फिर पृथक से ग्रहण करना व्यर्थ है। आचार्य कहते हैं न अनर्थकम, व्यर्थ नहीं है। कालद्वय सूचनार्थत्वात् प्रपंचस्य, दो प्रकार के काल की सूचना करने के लिए इतना लंबा विस्तार किया है सूत्र का। कालो ही द्विविधः, काल दो प्रकार का है, परमार्थ कालो व्यवहार कालश्चेति च, परमार्थ काल और व्यवहार काल। परमार्थ यानी निश्चय काल, परमार्थ कालो वर्तना लक्षण, परमार्थ काल जो है वर्तना लक्षण वाला है, परिणाम आदि लक्षण व्यवहार काल, परिणाम आदि लक्षण वाला व्यवहार काल है। अन्येन परिच्छिन्न अन्यस्य परिच्छेद हेतु क्रिया विशेष काल इति व्यवह्रियते, अन्य द्वारा जाना गया, अन्य के जानने में हेतु बना, ऐसी जो क्रिया विशेष है काल है, इस प्रकार व्यवहार किया जाता है। यानी जैसे सूर्य ऐसे पूर्व से पश्चिम चला गया तो दिन हो गया, जैसे ये व्यवहार से समझ में आया, किसी और से जाना गया सूर्य के माध्यम से, काल का निर्णय हुआ, दिन हुआ, तो ये व्यवहार काल है, क्योंकि व्यवहार पर सापेक्ष। सत्रिधा व्यवतिष्ठते, अब वो व्यवहार काल तीन प्रकार से व्यवस्थित है, भूतो वर्तमानो भविष्यन निति, भूत वर्ष वर्तमान और भविष्यन, पुल्लिंग में भविष्यन नकारांत कर दिए, भविष्य नहीं है शब्द, भविष्यन नकारांत किया पुल्लिंग में। तत्र परमार्थ काले काल व्यपदेशो मुख्य, अब उसमें जो परमार्थ काल है उसमें काल का नाम प्रमुख है। भूतादि व्यपदेशो गौण, उसमें भूतादिक का नाम, भूतादिक संज्ञाएं गौण है। व्यवहार काल है, अब व्यवहार काल में भूतादि व्यपदेशो मुख्य, काल व्यपदेशो गौण है, व्यवहार काल में भूतादिक व्यपदेश मुख्य है और काल की संज्ञा गौण है। क्रियावत द्रव्यापेक्षत्वात्, क्रिया करने वाले द्रव्यों की अपेक्षा करने से कालकृतत्वाच्च, और कालकृत होने के कारण भी व्यवहार काल में भूत भविष्य और वर्तमान ये नाम मुख्य है। अत्राह, यहां कोई कहता है इस सूत्र का जब स्वाध्याय चल रहा था, सन 86 की बात है, 19 साल पहले आचार्य पढ़ा रहे थे सर्वार्थ सिद्धि, उस टाइम डॉक्टर हुकुमचंद भारल सभा में बैठे हुए थे, आचार्य ने इसके ऊपर काफी लंबा व्याख्यान किया था। काल के ऊपर, इसी सूत्र के ऊपर बहुत लंबा, वर्तना के ऊपर लंबा व्याख्यान खींचा था। अब उस समय उन्होंने क्या बोला था ये सब अभी पता नहीं, कहीं अंदर पड़ा होगा पीछे व्यक्त नहीं है। पहली बार ही उस समय स्वाध्याय किया था इसका सर्वार्थ सिद्धि। अत्राह, यहां कोई कहता है धर्माधर्म आकाश पुद्गल जीव कालानाम उपकारा उक्ता, धर्म अधर्म आकाश पुद्गल जीव और काल इनके उपकार कहे जा चुके हैं। लक्षणं च उक्तम, और लक्ष्मण लक्षण भी बतला चुके हैं हम, उपयोगो लक्षण इत्यादि, उपयोगो लक्षण इत्यादि अपने लक्षण भी बतलाया है। पुद्गलानां तो सामान्य लक्षण मुक्तम अजीव काया, पुद्गलों का सामान्य लक्षण कहा था कि पुद्गल अजीव होते हैं और काय रूप होते हैं, इति विशेष लक्षणम नोक्तम, विशेष परिचय नहीं दिया आपने पुद्गल का, तो तत्किम इति अत्र उच्यते, वो क्या है, तो इसलिए यहां पर कहते हैं स्पर्श रस गंध वर्णवंत पुद्गलाः, स्पर्श रस गंध और वर्ण वाला जो कुछ भी है वो सब पुद्गल है। बहुवचन इसलिए दिया क्योंकि उसके कई भेद होते हैं। स्पृश्यते स्पर्शन मात्रम वा स्पर्श, जो छुआ जा सके अथवा छूना मात्र जो होता है वो स्पर्श। सोष्ठ विध वो आठ प्रकार का, मृदु कठिन गुरु लघु शीतोष्ण स्निग्ध रूक्ष्म भेदात। मृदु कठिन यानी कोमल और कठोर, गुरु लघु भारी और हल्का, शीतोष्ण ठंडा गर्म, स्निग्ध रूक्ष्म चिकना और रूखा। स्निग्ध का अर्थ चिकना, गुजराती में जो चिकना होता है वो चिपकने वाला होता है, लेकिन यहाँ स्निग्ध का मतलब जो लिस्सा जिसको गुजराती में बोलते हैं वो स्निग्ध है, स्मूथ। और रूक्ष यानी खुरदुरा। रस्यते रसन मात्रम वा रस, जिसका रस लिया जाता है या फिर जो रस मात्र है, रस लेना मात्र वो रस है। सपंच विधा वो पांच प्रकार का, तिक्ताम्ल कटु को मधुर कषाय भेदात। तीखा अम्ल यानी खट्टा, कटु यानी कड़वा कटुक, और मधुर यानी मीठा, और कषाय यानी कसायला। हरड़ और आंवले का जो स्वाद होता है ना, फिटकरी का जो स्वाद होता है वो कषायला होता है। गंधते गंधन मात्रम वा गंध, जो गंध को प्राप्त होती है अथवा गंध मात्र गंध है। सद्वेधा वो दो प्रकार के, सुरभि रसुरभिरति सुगंध दुर्गंध रूप में। वर्ण्यते वर्णन मात्रम वा वर्ण, जो रंग रूप हो या रंग मात्र हो वो वर्ण है। सपंचविद वो पांच प्रकार का है, कृष्ण नील पीत शुक्ल लोहित भेदात। कृष्ण यानी काला, नील यानी नीला, पीत यानी पीला, और शुक्ल यानी सफेद, और लोहित यानी लाल, इतने भेद वाला। ते मूल भेदा, ये सारे मूल भेद हो गए। प्रत्येकम संख्या संख्या नंत भेदाश्च भवन्ति, लेकिन इनके जो उत्तर भेद हैं यानी इनके कॉम्बिनेशंस बनाओ, मिश्रण बनाओ, और फिर तीव्र मंद मध्यम, और फिर बीच के और भी जो भेद हैं इन सबको बनाओगे तो संख्यात भेद बन जाएंगे, असंख्यात भी बन सकते हैं, और अनंत भेद भी हो सकते हैं। स्पर्शस्य रसस्य गंधस्य वर्णस्य स्पर्श रस गंध वर्णास त एतेषां सन्ति इति स्पर्श रस गंध वर्ण वदन्ति। स्पर्श रस गंध और वर्ण इन वाले जो होते हैं, जिनके पास ये होते हैं, वो स्पर्श रस गंध वर्णवान कहलाते हैं। नित्य योगे मतु निर्देश, यहाँ नित्य योग में मतु का निर्देश किया गया है व्याकरण के, मतु प्रत्यय का। यथा क्षीरिणो न्यग्रोधा इति, जैसे दूध वाले ये बड़ के पेड़ जो होते हैं उनमें दूध होता है, क्षीरिणो ऐसा उसमें कर दिया है। ननुच, अब शंका और आती है कि रूपिण पुद्गला इत्यत्र पुद्गला नाम रूपवत्व मुक्तम, रूपी पुद्गल होते हैं, यहाँ पर आपने पुद्गल में रूपीपना बतला दिया था, तो तदविनाभाविनश्च और रूप के अविनाभावी रसादेश तत्रैव परिगृहीता, रस आदिक भी उसी में ग्रहण कर लिए गए। इति व्याख्यातम, ऐसा व्याख्यान किया था आपने बीच में, तस्मात तेनैव पुद्गलानां रूपादि मत्व सिद्धे, इसलिए उसी सूत्र के द्वारा पुद्गलों के पास रूप आदिक वाला होने की सिद्धि हो जाती है। तो सूत्र में तम अनर्थकम इति, तो इसलिए ये सूत्र तो आपने व्यर्थ में बना लिया, नैष दोष। आचार्य कहते हैं कि नहीं, ये दोष नहीं है। नित्यावस्थान्य रूपाणी इत्यत्र धर्मादीनाम नित्यत्वादि निरूपणेन निरूपणेन पुद्गलानाम अरूपित्व प्रसंगे तदपाकरणार्थम तदुक्तम। वहां पर अपवाद सूत्र था वो, क्योंकि नित्य अवस्थित और अरूपी होते हैं कौन, ये अजीव अजीव द्रव्य, लेकिन उनमें पुद्गल द्रव्य अरूपी नहीं होता, ये बतलाने के लिए वहां रूपिणा पुद्गला कहा था। अब यहां पर पुद्गल इदं तु, किंतु यहां पर तेषां स्वरूप विशेष प्रतिपत्त्यर्थम उच्यते, उन पुद्गलों का स्वरूप विशेष बताने के लिए ये सूत्र कहा जाता है। अवशिष्ट पुद्गल विकार प्रतिपत्त्यर्थम इदं उच्यते, अब बचे हुए जो पुद्गलों के विकार यानी उन पुद्गलों की पर्याय है उनकी जानकारी के लिए यह अगला सूत्र कहा जाता है। शब्द बंध सौक्ष्म सौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपो द्योतबंतश्च, शब्दो द्विविधो, शब्द दो प्रकार का, भाषा लक्षणों विपरीतश्चेति, भाषा रूप और अभाषात्मक। भाषा लक्षणों द्विविध, भाषा वाला दो प्रकार का, साक्षरो नक्षरश्चेति, साक्षरी भाषा और अनक्षरी भाषा। अक्षरीकृत शास्त्राभिव्यंजक, अक्षर द्वारा की गई शास्त्रों को अभिव्यंजित करने वाली संस्कृत विपरीत भेदादार्य म्लेच्छ व्यवहार हेतु, संस्कृत भाषा और उससे विपरीत भेद वाली प्राकृत आदि भाषाएं जो होती है वो आर्य और म्लेच्छ के व्यवहार में हेतु बनती है। आर्यजन जिस भाषाओं को बोलते हैं, जिन भाषाओं को बोलते हैं,